ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी पहुंच चुकी हैं। हम सभी करतल ध्वनि से दीदी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आदरणीय दीदी बचपन से ही बाबा के ज्ञान में हैं और विगत 30 वर्षों से आप समर्पित रूप से बाबा के यज्ञ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। पहले आप ग्लोबल हॉस्पिटल में जिस्मानी डॉक्टर के रूप में आपने सेवाएं दी, तत्पश्चात हमारी जो परम श्रद्धेय दादी प्रकाशमणि जी हैं थी, तो आप दादी के साथ उनके स्वास्थ्य की देखभाल की सेवा में रही और वर्तमान में आप संस्था के महिला प्रभाग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही मधुबन में जो भी राजयोग शिविर चलते हैं, क्लासेस चलती हैं, तो शिविर कराने के भी आप निमित्त हैं। ऐसी ज्ञान योग और तपस्या की धनी आदरणीय सविता दीदी आप सभी को अनमोल ज्ञान रत्नों से भरपूर करने के लिए हमारे बीच पहुंची हैं। तो एक बार और हम दीदी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आदरणीय सविता दीदी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी को बाबा ने संगम युग पर अनेक स्मृतियां दिलाई हैं, तो बाबा कहते हैं हम बाबा के तिलकधारी बच्चे हैं, तख्तनशीन हैं और ताजधारी हैं। अनेक स्वमान बाबा ने हमें याद दिलाए हैं कि हम कौन थे, अभी क्या हैं और क्या बनने वाले हैं। तो उनमें से एक स्वमान है कि हम तिलकधारी हैं, तख्तनशीन हैं और ताजधारी हैं। तो कौन सा तिलक लगा हुआ है, कौन सा तिलक लगा हुआ है, कौन से तिलकधारी हैं? आत्मिक स्मृति के तिलकधारी हैं। वो तिलक नहीं जो मंदिर में हम लगाते हैं, वो तिलक तो अल्पकाल का तिलक होता है, थोड़ा समय लगाते हैं, लेकिन ये हैं अविनाशी आत्मिक स्मृति का तिलक कि मैं आत्मा हूँ। ये पहचान मुझे मिली तो फिर आत्माभिमानी स्थिति हमारी रहे, सदा ही रहे, ऐसा बाबा हमें कहते हैं। लेकिन ये पहला पाठ भी है तो अंतिम पाठ भी है। पहले दिन जो पाठ पढ़ते हैं हम यही पढ़ते हैं और अंत तक भी हमारी स्मृति कई बार ये पक्की नहीं हो पाती कि मैं आत्मा हूँ। कितना समय रहती है, योग में बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, उस समय कोशिश करते हैं, लेकिन सारा दिन जब कर्म में जाते हैं तो फिर कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। पहले कर्म कॉन्शियस होते हैं और फिर कभी कभी बॉडी कॉन्शियस भी हो जाते हैं, देह अभिमान में भी आ जाते हैं। देह अभिमान में आते हैं तो फिर हमारे पुराने संस्कार, जो देह अभिमान के संस्कार हैं, वो जागृत हो जाते हैं। आत्माभिमानी स्थिति में आत्मा के गुण स्वरूप में आते हैं, क्योंकि आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो जब आत्मिक स्थिति में है तो ये अनुभव हम खुद भी करते हैं और हमारे संपर्क में जो अन्य आते हैं वो भी यही अनुभव करते हैं। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, केवल ये नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? तो कौन सी आत्मा हूँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। जैसे अभी स्मृति की बात कही कि शांत स्वरूप आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, या विश्व कल्याणकारी हूँ, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, भगवान की चुनी हुई मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो ये स्मृति, केवल मैं आत्मा हूँ नहीं लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, ये भी हमें याद रहना चाहिए। तो सारा दिन अगर ये स्मृति हमारी रहती है तो फिर हम कहेंगे ये स्मृति का तिलक हमें लगा हुआ है, जो बाबा ने हमें लगाया है। और यदि हम भूल जाते हैं तो इसका मतलब उतना समय हमारा वो तिलक मिट गया। फिर हम बाबा के तख्त नशीन बच्चे हैं। तो कौन से तख्त नशीन हैं? बाबा के दिल तख्त नशीन है। दो प्रकार के तख्त हैं ना, एक अकाल तख्त है और दूसरा है दिल तख्त। तो अकाल तख्त नशीन तो आत्मा है ही है, लेकिन बाबा के दिल तख्त नशीन हम सिर्फ बाबा के बच्चे ही हो सकते हैं। ऐसे तो बाबा कहते हैं कि बाबा का दिल तख्त इतना बड़ा है कि सारी दुनिया की आत्माएं भी उस पर बैठना चाहें तो बैठ सकती हैं, बेहद है। दुनिया के तख्त इतने बड़े नहीं होते हैं, उसमें तो एक पर एक ही बैठ सकता है। और वो भी कौन सा तख्त होता है जिसकी टांग लोग खींचते रहते हैं कि ये कब उतर जाए तो फिर हमें नंबर मिले कि हम इस तख्त पर बैठे। लेकिन बाबा के दिल तख्त पर सब एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बैठ पाते हैं। हालांकि बाबा की खुली छुट्टी है लेकिन फिर भी नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि बाबा के दिल तख्त नशीन होने के लिए शर्त है, विधि है। कौन बैठ सकता है बाबा के दिल तख्त पर? दो प्रकार के आत्माएं बाबा के दिल तख्त नशीन होती हैं। एक तो सच्चे दिल पर साहब राजे, जो सच्चाई सफाई वाले हैं, जो अंदर बाहर जैसे हैं, जिनके अंदर हेरा फेरी या कपट संसार नहीं है। बाबा से भी सच्चे और साथ में परिवार से भी सच्चे, आपस में संबंध संपर्क व्यवहार में भी सच्चे। तो कलयुगी दुनिया के लिए क्या कहते हैं ना, आज कलयुगी दुनिया की क्या विशेषता है? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। लोग कहते हैं बिना झूठ के तो काम ही नहीं चलता आज की दुनिया में। तो लोग कदम कदम पर, बात बात पर झूठ बोलते हैं। ऐसे ही दुनिया में हम रहते हैं। और फिर हम ऐसी दुनिया में रहते हुए सच्चाई पूरी तरह से सच्चाई सफाई वाले हो जाएं, संभव है या नहीं है? क्या कहेंगे? थोड़ा थोड़ा तो झूठ का आधार लेना ही पड़ता है। बिना झूठ के कहाँ बिजनेस कर सकते हैं, बिना झूठ के कहाँ दुनिया में चल सकते हैं। फिर अपनी थोड़ी बहुत कोई गलती हो जाती है, उसे छुपाने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। नहीं तो सबके सामने अगर हमारी गलती आ जाए तो हमारा खराब होता है। क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? कई बार बाबा ऐसे कहता है कि ब्राह्मण भी ऐसा सोचते हैं, झूठ का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि झूठ के लिए तो पाप हो गया, विकर्म हो गया, वो कहेंगे ना। तो युक्ति बोलते हैं कि युक्ति से चलना पड़ता है तो युक्ति से मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ भी अगर कल्याण के लिए हम झूठ बोलते हैं, जिसे युक्ति कहते हैं, तो बाबा उसके लिए हमें छुट्टी देते हैं। मानो किसी के घर वाले ज्ञान में नहीं चलते और आपको सेवा केंद्र पर आने के लिए मना करते हैं, और आप जाते हैं बाजार। हाँ, आप ये कहकर जाते हैं कि हम बाजार जा रहे हैं, लेकिन आप बाजार जाने की बजाय कहाँ जा रहे हैं? सेंटर जा रहे हैं, या मधुबन आपको आना है, आप सीधा सीधा बोलकर मधुबन नहीं आ सकते, तो आप कहते हैं कि हम फलाने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, पर जाते वहाँ नहीं है, आ जाते हैं मधुबन। बहुत लोग जो बंधन वाले हैं वो ऐसा करते हैं। तो इसको बाबा झूठ नहीं कहता है, क्योंकि ये अपने कल्याण के लिए हमने एक विधि अपनाई, क्योंकि हम दूसरों को भी अशांत नहीं करना चाहते, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और अपने को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन स्वार्थ के लिए जो हम झूठ बोलते हैं, दुनिया का जो स्वार्थ है उसके लिए हम जो झूठ बोलते हैं, या अपने आप को छुपाने के लिए, बचाने के लिए जो हम झूठ बोलते हैं, वो झूठ फिर गलत ही है, वो फिर पाप ही है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई भी श्रीमत के विपरीत हमसे कर्म होता है, उसके लिए हमेशा हमें बाबा को सच सच सुना देना है। इसीलिए रोज रात को हमें चार्ट देना चाहिए, बाबा को सोने के पहले हमें चार्ट देना है। तो चार्ट में हम बाबा को वो सब बता सकते हैं जो भी बाबा की श्रीमत प्रमाण हमसे नहीं हुआ, तो फिर आधा वही माफ हो जाता है, बाबा ऐसे कहता है। और आधे के लिए जो रहा उसके लिए भी बाबा हमें शक्ति दे देते हैं। तो इसीलिए सच्ची दिल साफ दिल, ऐसे भी नहीं किसी के बारे में हम सामने कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं। सामने तो हम बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, और जैसे ही वो हमसे दूर जाते हैं, तुरंत उनके बारे में हम गलत बातें कहना शुरू करते हैं, उनकी ग्लानी करना शुरू कर देते हैं। जिसको लोग कहावत में कहते हैं, थोड़ा कठोर शब्द है, कि मुख में राम बगल में श्री। तो ऐसा व्यवहार करने वाले को क्या कहेंगे? हम ब्राह्मण बच्चे नहीं करते हैं ऐसा, क्योंकि बाबा का बनने के बाद हमारा ये परिवर्तन तो जरूर होता है, लेकिन फिर भी पुराने संस्कार अगर इमर्ज हो जाते हैं कई बार, तो फिर ऐसा व्यवहार कई बार देखने में आता है कि ब्राह्मण भी कई बार ऐसा व्यवहार करते हैं कि सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और हो जाते हैं। तो फिर हम सच्चे साफ नहीं हैं बाबा के साथ। तो ये हमें टेंशन रखना है, बाबा के दिल तख्त नशीन अगर होना है तो ये गुण बाबा को बहुत पसंद है, सच्चाई और सफाई। उसको बाबा भोला कहता है, वो भोला नाथ है और अपने भोले बच्चों पर वो राजी होता है, जिनके अंदर कोई उल्टी चतुराई नहीं है। उल्टा कर्म करके, चतुराई करके अपना काम निकाल लेना। फिर दूसरा है, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। ये धारणा भी बाबा को चाहिए कि बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरे जीवन का आधार है, सब संबंध हमारे एक बाबा से ही है। तो जब सर्व संबंधी एक बाबा है, और जो भी हम प्रवृत्ति में रहते हैं, संबंधों में रहते हैं, वो सिर्फ बाबा ने सेवा अर्थ मुझे संबंध दिए हैं, सेवा के निमित्त मुझे रखा है, लेकिन मोह वाला संबंध नहीं। संबंध बोला मेरा कौन? एक मेरा सिर्फ एक बाबा है, और बाबा कौन है? बाबा के हैं, बच्चे भी बाबा के हैं, तो परिवार में जो भी हैं, पति हैं और भी जो संबंध हैं, वो सब किसके हैं? बाबा के। हम ट्रस्टी हैं। तो जितना हम बाबा को अपना सर्व संबंधी समझ कर चलते हैं, उससे याद करते हैं, उतना ही हम बाबा के दिल तख्त नशीन होते हैं। और तीसरा है, हम ताजधारी हैं। तो ताज भी दो प्रकार के हैं, एक ताज बने दिया है पवित्रता का, और दूसरा ताज है जिसको लाइट का ताज कहते हैं, डबल लाइट स्थिति है हमारी, और दूसरा ताज है सेवा का। विश्व सेवाधारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। तो बाबा के सभी बच्चे, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं, सभी के ऊपर ये सेवा का ताज बाबा ने डाला, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना बाबा बच्चों के सहयोग से ही करते हैं। बाबा स्वयं विश्व का परिवर्तन नहीं करते, इसकी जिम्मेवारी किसकी है, एक एक उंगली किसकी लगती है, ये कलयुगी पर्वत उठाने में एक एक उंगली कौन देता है, हम सभी बाबा के बच्चे देते हैं। तो ये भी संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं, हम तो नए आए हैं ज्ञान में, हमें तो थोड़ा ही समय हुआ है, हम क्या सहयोग करेंगे, जो पुराने हैं, जो साकार बाबा के समय के हैं, जो महारथी भाई बहने हैं, वही विश्व कल्याणकारी हैं, वही विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। पर जैसे कोई मशीन चलती है तो मशीन में एक एक पुर्जे की वैल्यू होती है, अगर कोई पुर्जा ढीला हो जाता है तो फिर वो मशीन ठीक से काम नहीं करती है, होता है ना। तो ये भी विश्व परिवर्तन की मशीनरी है और उसमें हरेक आत्मा का महत्व है, यानी हरेक आत्मा उसमें एक समझो एक पुर्जे की तरह है। तो एक आत्मा का भी अगर सहयोग नहीं है, चाहे वो कुमार हैं, कुमारी हैं, अधर कुमार हैं, अधर कुमारी हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, समर्पित हैं, सेंटर पर समर्पित होकर के सेवा कर रहे हैं, जो भी हैं, छोटे बच्चे हैं, सभी के सहयोग से स्वर्णिम संसार या सुखमय संसार की स्थापना बाबा कर रहे हैं। तो हम सभी तो सेवा करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, सभी सेवा करते हैं, तीन तरह से करते हैं। तो जो कर्मणा सेवा करते हैं वो सेवा करना तो आसान होता है, कर्मणा सेवा सभी सेवा केंद्रों पर समय प्रति समय कार्यक्रम होते हैं, कोई भी तो सभी सहयोग देते हैं। तो हद की सेवा है कर्मणा सेवा, माना अपने स्थान पर जो स्थूल सेवा है, यज्ञ सेवा है, वो सेवा हम करते हैं, या मधुबन में हम आते हैं तो मधुबन में आकर के भी जो यज्ञ सेवा हमें मिलती है, सेवाधारी बनकर के जब आते हैं तो ये महायज्ञ है बाबा का, यहाँ भी हम सेवा करते हैं। तो अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा जो हम सेवा करते हैं कर्मणा सेवा, फिर वाणी के द्वारा भी हम सेवा करते हैं, हम बाबा का ज्ञान विश्व की आत्माओं तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बाबा का संदेश सबको मिले, जो प्राप्ति हमें हुई है वो प्राप्ति अन्य आत्माओं को भी हो, ये भावना होती है। तो जिनके भी हम संपर्क में आते हैं उनको हम ज्ञान सुना करके बाबा के समीप आने की कोशिश करते हैं, ये भी हद की सेवा है कि हम एक को सुनाएंगे, दो को सुनाएंगे, चार को सुनाएंगे, थोड़ा बड़ा प्रोग्राम होगा तो एक ग्रुप को सुना लेंगे, कोई लेक्चर करेगा तो थोड़ा कुछ 100 को सुना लेगा, कोई टीवी में बोलेगा तो कुछ हजारों तक वो पहुंच जाएगा। आजकल मीडिया है तो मीडिया के कारण वाणी की सेवा हम एक स्थान पर हम करते हैं और वो हो सकता है थोड़ा दूर तक भी जाए। लेकिन जब हम मनसा सेवा कहते हैं, वाणी की सेवा थोड़ा सा कर्मणा सेवा से कठिन है, क्योंकि वाणी की सेवा के लिए थोड़ा सा हमें अभ्यास करना पड़ता है और वो अभ्यास के द्वारा फिर हम ज्ञान सुनाने की सेवा कर सकते हैं। लेकिन जब हम मनसा सेवा की बात करते हैं तो मनसा सेवा देखने में तो सहज लगती है, क्योंकि मनसा सेवा है शुभ भावना शुभ कामना की सेवा, और मन से हम विश्व की सभी आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि मन सूक्ष्म है और मन की गति बहुत तेज है, मन कहीं भी जा सकता है, मन से ही हम परम धाम जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं। तो विश्व की किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा तक हम अपने संकल्पों के द्वारा सेवा कर सकते हैं। तो एक स्थान पर बैठे हुए विश्व की आत्माओं की सेवा ही हमें विश्व कल्याणकारी बनाती है, विश्व सेवाधारी बनाती है, यानी मनसा सेवा के द्वारा ही हम विश्व कल्याणकारी बनते हैं। लेकिन जब हम मनसा सेवा कहते हैं तो ये सूक्ष्म सेवा है, दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है तो हमें, हम समझ भी नहीं पाते कि हमारे आत्मा तक पहुंच भी रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, जिसके प्रति हम वो सेवा कर रहे हैं। उसका कोई प्रमाण भी हमें नहीं मिलता है। जैसे हमने कर्मणा सेवा की या हमने वाणी द्वारा सेवा की, तो प्रत्यक्ष हमें मालूम है कि ये सेवा हो रही है और इसका जो फल है, इसकी खुशी, इसकी शक्ति भी हम अनुभव कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जितना सूक्ष्म होता है उतना ही वो शक्तिशाली होता है। आज हम विज्ञान के साधन भी देख रहे हैं कि जितनी सूक्ष्मता में जा रहे हैं उतने ही वो शक्तिशाली होते जा रहे हैं साधन भी। आज देखो हमारे पास मोबाइल फोन है, मोबाइल भी फोन क्या, स्मार्टफोन है। अब हम पहले वाले फोन देखें तो पहले वाले फोन कैसे होते थे? बड़ा फोन होता था जो एक ही जगह पर रखा होता था घर में, और अगर हमें फोन करना है तो उसी स्थान पर जाकर के वो कान में लगाना है और नंबर डायल करना है। कहीं हम उसको लेकर के नहीं जा सकते थे, उसका स्थान निश्चित होता था। बाद में और आगे विज्ञान बढ़ी तो फोन जो था उसको हम पूरे घर में कहीं भी बात कर सकते हैं, यानी मोबाइल हो गया। वो मोबाइल इस तरह का हो गया कि कुछ दायरे में उससे बात की जा सकती है, लेकिन और सुविधा नहीं थी उसके अंदर, कोई भी केवल फोन हो सकता है। फिर उसके बाद मोबाइल छोटे हो गए, उसका आकार छोटा हो गया कि हम हाथ में लेकर के उसे घर से बाहर कहीं भी जा सकते हैं और किसी से भी कहीं भी बात कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वो सिर्फ फोन ही था और सुविधाएं उसमें नहीं थी, लेकिन ये सुविधा बढ़ गई कि केवल घर में नहीं, आप घर के बाहर भी कहीं भी हैं आप बात कर सकते हैं। लेकिन कितना छोटा हो गया साइज, जितनी सुविधा बढ़ी साइज कितना हो गया, छोटा। फिर और इन्वेंशन हुई उसके आगे, तो फिर मोबाइल में केवल आप बात ही नहीं कर सकते, आप उसमें सुन भी सकते हैं। चाहे आप गीत सुने, चाहे आप क्लासेस सुने, या जो भी ऑडियो आप सुनना चाहते हैं वो ऑडियो भी आप उसमें डाल सकते हैं और सुन सकते हैं। और सुविधा हुई उसमें तो और भी कैमरा भी, अब आप उसमें फोटो भी निकाल सकते हैं, उसमें टॉर्च भी है, उसमें घड़ी भी है, मल्टी फंक्शन। केवल एक फंक्शन नहीं, उस छोटे से मोबाइल में कितने सारे फंक्शन। फिर और सुविधा बढ़ी तो अब आप वीडियो भी देख सकते हैं, केवल सुन नहीं सकते लेकिन कोई वीडियो है वो भी देखा जा सकता है उसके अंदर। और सुविधा बढ़ी तो इंटरनेट आ गया। हाँ, स्मार्टफोन माना इंटरनेट, तो इंटरनेट माना सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। सारी दुनिया मुट्ठी में है माना दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जो उस मोबाइल में देखी सुनी नहीं जा सकती या पढ़ी नहीं जा सकती। तो छोटा सा मोबाइल और क्षमता कितनी, एक छोटा सा एसडी कार्ड आप डालते हैं, जितनी मेमोरी का आप डालेंगे उतना ही डाटा उसमें है, अनगिनत, अनलिमिटेड। तो सूक्ष्म हुआ उतना ही पावरफुल हो गया। आज एटॉमिक वेपन्स हैं, सूक्ष्म है लेकिन पावर कितनी है कि एक बॉम्ब पड़ेगा तो लाखों लोग मर जाएंगे। और पुराने जमाने में लोग युद्ध के मैदान में लड़ते थे, एक तीर से एक ही व्यक्ति मर रहा है, हाँ, या एक भाला चलाया तो एक ही व्यक्ति मर रहा है, एक तलवार चलाई तो हाँ एक दो ही मरेंगे उससे। लेकिन आज के साधन कैसे हैं विज्ञान के, सूक्ष्म हो गए तो कितने शक्तिशाली हो गए। कहने का भाव ये है कि जितना सूक्ष्म बाबा कहते हैं शक्तियां होती हैं उतना ही उनकी पावर ज्यादा होती है, भले वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ विधि है मनसा सेवा की, मनसा सेवा की विधि है, उससे से ही हमें सिद्धि मिलती है। तो यदि हम आत्माओं को सकाश देते हैं या वाइब्रेशन देते हैं तो मनसा हमारी शुद्ध होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। हमारी मनसा सदा ही दातापन की भावना वाली हो, निस्वार्थ हो, परोपकार की भावना वाली हो, दूसरों से अपेक्षा नहीं हो हमारे अंदर। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि हम जिन आत्माओं के प्रति सेवा करते हैं उनके प्रति हमारे भाव सदा शुद्ध नहीं रहते हैं। ज्यादातर हम मनसा सेवा उनकी ही कर रहे होते हैं जो हमसे कुछ विरोध का भाव रखते हैं। जो हमारे प्रति शुभ भावना रखते हैं उनके प्रति तो हमारी शुभ भावना होती है, जो हमसे स्नेह रखते हैं उनके प्रति हमारे स्नेह की भावना स्वतः ही होती है। लेकिन मनसा सेवा यानी कोई विघ्न उत्पन्न कर रही है आत्मा हमारे लिए, हाँ, या जो भी कहें उन आत्माओं के से हमारे संस्कार विचार नहीं मिलते हैं, तो हम सोचते हैं कि इनको भी शांति हो, हाँ, ये भी बाबा का ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन जैसे ही उनकी वृत्ति हमारे प्रति बदलती है, हमारी भी वृत्ति उनके प्रति बदल जाती है। वो हमारे प्रति नेगेटिव होते हैं तो हम भी उनके प्रति नेगेटिव हो जाते हैं, और अगर हम भी उनके प्रति नेगेटिव हो गए तो हम कितना भी उनको वाइब्रेशन देते रहेंगे वो नेगेटिव वाइब्रेशन उस आत्मा तक नहीं पहुंचते हैं। देखो जो रामायण की कहानी वगैरह दिखाते हैं ना, उसमें दिखाते हैं कि रावण जो तीर डालता है फिर राम भी तीर डालते हैं, लेकिन वो तीर क्या करता है, जो रावण का तीर है उसको काट देता है, खत्म कर देता है, मतलब वो तीर राम तक पहुंचता ही नहीं है। तो जो वो प्रतीक है, जो वो युद्ध है वो प्रतीक है कि जो रावण है, रावण माना जो विकारों का प्रतीक है, उसके वो जो नेगेटिविटी आती है और राम पॉजिटिविटी के प्रतीक है। अगर राम के वो शुद्ध संकल्प जा रहे हैं तो वो रावण के नेगेटिव संकल्पों को अपने तक पहुंचने से पहले ही उसे समाप्त कर देते हैं। माना नेगेटिव संकल्प नहीं पहुंच सकते, शुद्ध संकल्प ही हम किसी आत्मा तक पहुंचा सकते हैं। तो ये मनसा सेवा की विधि है कि जिस भी आत्माओं की हम सेवा कर रहे हैं उनके प्रति हमारे संकल्प सदा शुद्ध श्रेष्ठ और निस्वार्थ होने चाहिए। नहीं तो फिर हम सोचते हैं कि हमको इतना समय हो गया इनको सकाश देते हुए, लेकिन कोई परिवर्तन तो नजर नहीं आता। और खासकर जो प्रवृत्ति वाले हैं वो अपने परिवार वालों के प्रति ही मनसा सेवा ज्यादा करते हैं कि हमारे परिवार वाले बाबा के समीप कैसे आ जाएं। पर उनके साथ ही हम रहते हैं तो उनकी कई बातें उनके प्रति हमें नेगेटिव भी बनाती रहती हैं, तो ये अटेंशन रखना आवश्यक है। फिर मनसा शक्तिशाली होनी चाहिए। अगर हम मनसा सेवा करना चाहते हैं तो मनसा शक्तिशाली हो, वही वाइब्रेशन पहुंच सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि एक 0 वॉट का बल्ब जलता है तो उसकी रोशनी कितनी होती है, और एक 100 वॉट का बल्ब जलता है तो उसकी रोशनी कितनी होती है, कि वो एक कमरे में पूरी रोशनी कर देता है, और एक 1000 वॉट का बल्ब जलता है तो उसकी रोशनी एक मैदान तक, पूरे मैदान तक चली जाती है। और एक लाइट हाउस जो है वो लाइट हाउस की रोशनी मीलों तक समुद्र में जाती है, और समुद्र में जो भी जहाज होते हैं उन जहाजों का वो मार्गदर्शन करती है ना। तो फिर अगर मेरे मनसा शक्ति 0 वॉट के बल्ब की तरह है, यानी सिर्फ मेरे वाइब्रेशन मेरे तक ही है, आसपास भी नहीं फैलते, तो क्या हम दूर बैठी आत्माओं तक वाइब्रेशन पहुंचा सकते हैं? या 100 वॉट का बल्ब है यानी एक कमरे तक मेरे वाइब्रेशन फैलते हैं, या 1000 वॉट का बल्ब है यानी हमारे कमरे के आसपास जो हमारा मोहल्ला है, हमारा एरिया है, वहां तक मेरे वाइब्रेशन फैलते हैं। बनना क्या है? लाइट हाउस। बाबा कभी कहता है हमें कि इतने वॉट का बल्ब बनता है, हमेशा लाइट हाउस माइट हाउस बनो, ऐसे बाबा कहते हैं। तो लाइट हाउस माना दुनिया के किसी भी कोने में हम अपनी उस शक्ति के द्वारा प्रकाश पहुंचा सकते हैं। लेकिन मनसा शक्तिशाली कैसे बने? अगर हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, कोई भी परिस्थितियां आती हैं, विघ्न आते हैं, समस्याएं आती हैं, आते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण बन गए तो हमारे जीवन में कोई विघ्न समस्याएं नहीं आएंगे। हाँ, कोई हमें कुछ कह जाएगा, कुछ बोल जाएगा, कोई गुस्सा कर जाएगा, कोई इंसल्ट कर देगा, कोई भी घर में कोई बात ऊपर नीचे हो जाती है। तो अगर हमको बहुत सोचने की आदत है, अगर हम छोटी छोटी बातों को भी ज्यादा सोचते हैं, या बीत गई कोई बात उसको भी हम सोचते रहते हैं, तो फिर हमारी मनसा शक्ति को हम मनसा शक्ति हमारी क्षीण होती रहती है, या विकारों के वश होकर के नेगेटिव संकल्प चलते हैं मन में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का असर हमारे ऊपर आ जाता है, तो कभी काम विकार के वश संकल्प चलते हैं, किसी के प्रति लगाव झुकाव है, मानो उस आत्मा के प्रति हमारे संकल्प चलते हैं, या क्रोध में किसी के प्रति हमारी नफरत है, ईर्ष्या है, बदले की भावना है किसी के प्रति, उसके कारण हमारे नेगेटिव संकल्प चलते हैं, लोभ के वश चाहिए चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसको लेकर के हमारे संकल्प चलते हैं, मोह के वश, जिसके प्रति मोह होता है उसको लेकर के दुखी रहते हैं, उनकी बातों को, उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं करते तो दुखी होते हैं, ऐसे ही अहम देह अभिमान है। तो कोई भी विकार के वश जो संकल्प चलते हैं वो हमारे मन की शक्ति को कई गुना नष्ट करते हैं, एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, कई गुना, और उसके बाद हमारा योग भी नहीं लगता है। मनसा सेवा करना तो दूर, लेकिन बाबा के साथ यदि हम योग लगाना चाहें, व्यर्थ संकल्प चल रहे होते हैं मन में तो योग लगता है बाबा से, योग ही नहीं लगेगा तो मन में शक्ति भरेगी नहीं। ये ऐसे है मानो आप कोई बाल्टी में पानी भरना चाहते हैं और उसमें नीचे होल है, नीचे छेद है, तो बाल्टी भरेगी क्या? ऊपर से भरते जाएंगे और नीचे से बहता जाएगा। तो हम तो योग लगा रहे हैं बाबा से, तो शक्ति भरने की बजाय क्या हो रहा है? व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, तो वो शक्ति लीकेज, बाबा उसको कहता है लीकेज है, तो शक्ति भरती नहीं है मन में। मन उतना पावरफुल हमारा होता नहीं है कि हम लाइट हाउस की तरह पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश दे सकें। तो हम देते तो हैं, फिर हमारी मनसा सेवा सफल नहीं होती तो हम सोचते हैं पता नहीं हमारी सकाश पहुंचती भी है कि नहीं पहुंचती, तो क्यों नहीं पहुंचती? तो इसीलिए बाबा हमें कहता है कि हमें रोज ज्ञान सुनना है, रोज मुरली सुननी है। मुरली माना शुद्ध संकल्प, मुरली माना श्रेष्ठ संकल्प, जो ज्ञान का चिंतन हमें मिलता है मुरली से, वो शुद्ध संकल्प, समर्थ संकल्प हमारे मन को शक्तिशाली बनाते हैं। इसीलिए मुरली मिस नहीं करना चाहिए, और अगर मिस हो भी गई हमारी, मानो हम सेंटर पर जाकर नहीं सुन पाए, तो आज बहुत साधन है हमारे पास कि हम मुरली पढ़ लें, टेलीविजन में सुन सकते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप होता है, मोबाइल में आज अनेक ऐसी सुविधाएं हैं जिसके द्वारा हमें मुरली मिल जाती है। तो मुरली जरूर हमें पढ़ना है, और न सिर्फ पढ़ना है लेकिन उसे रिवाइज भी करना है, क्योंकि हम एक ही बार अगर मुरली पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो हम भूल जाते हैं, कितना याद रहता है ना। आज की मुरली के पॉइंट्स पूछेंगे, आज ने क्या कहा, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मुरली तो बहुत अच्छी थी लेकिन याद नहीं है क्या कहा बाबा ने। बहुत जोर लगाएंगे दिमाग पर तो बड़ी मुश्किल से एक पॉइंट याद आएगी। कोई सुना सकता है आज की मुरली की पॉइंट? इतने सब भाई बहने बैठे हैं, जो सुना सकता है वो उठ के जोर से बोलिए, तो सब सुने, गॉडली स्टूडेंट है। हाँ, क्रोध में आकर भौंकते हैं, आज बाबा ने बहुत अच्छा शब्द बोला। हाँ, आज की मुरली में ये था। हाँ? तो देवता बनाने वाला ठीक है, जो आपने थोड़ा थोड़ा भी जो पॉइंट सुनाई, बाबा ने कहा आज ये मुरली में, तो मुरली का मनन करना यानी विचार सागर मंथन करना। तो बाबा कहता ना, व्यस्त संकल्प भी क्यों चलते हैं, क्यों क्या कैसे में चले जाते हैं, इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा कैसे किया, इसको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो क्यों क्या कैसे में जाते हैं, तो व्यस्त संकल्पों की क्यों लग जाती है। लेकिन मनन चिंतन के लिए भी क्यों क्या कैसे ही करना है। बाबा ने ये क्यों कहा, क्या राज है इसका, उस राज को हम समझें कि बाबा ने आज ये पॉइंट कही। जैसे देह अभिमान को लेकर के बाबा ने कहा आज, हाँ, जो देह अभिमानी होते हैं या बाबा के जो गरीब बच्चे हैं, जो साहूकार हैं वो ज्ञान में नहीं आ सकते, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनको ही बाबा साहूकार बनाते, ये सब आज बाबा ने कहा ना। तो उसका राज क्या है, भगवान का वो राज समझने की कोशिश करें, क्यों ऐसा कहा बाबा ने। फिर ये जो बाबा ने मुरली में पॉइंट कही, ये मुझे पुरुषार्थ में कैसे आगे बढ़ा सकती है, कैसे मेरी लगन इससे मेरी स्व उन्नति हो सकती है, या दूसरों की सेवा में भी इस पॉइंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये सारी बातें चिंतन में लाना। या कई बार हमारा चिंतन नहीं भी चलता है, ऐसे भी होता है, कईयों का विचार सागर मंथन नहीं चलता, मुरली सुन लिया वो ठीक है, तो फिर मुरली रिवाइज तो कर सकते हैं। हम देखते थे बड़ी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी, उनके समीप रहने का हमें सौभाग्य मिला, तो हम देखते थे दादी जी चार बार मुरली पढ़ते थे, वो रात को सोने से पहले तो जरूर मुरली पढ़ेंगे, बिना मुरली पढ़े वो कभी भी नहीं सोते थे, चाहे कितना भी देर हो जाए, कितनी देरी से भी वो प्रोग्राम के बाद कमरे में आए, लेकिन मुरली जरूर पढ़ना, वो भी पूरी मुरली, ऐसे नहीं कि एक ही पेज पढ़ेंगे। और दूसरा, सुबह अमृत वेले उठ करके मुरली पढ़ेंगे, फिर शाम को आराम करके उठेंगे तो मुरली पढ़ेंगे, और क्लास में मुरली सुनाएंगे, चार बार हो गया। और किसी ने चार बार मुरली पढ़ लिया तो मुरली याद हो गई, जो स्मृति में है वही स्थिति और व्यवहार में आएगा, जो स्मृति में नहीं है वो व्यवहार में नहीं आएगा। आज जैसे धारणा की बात बाबा ने क्रोध के ऊपर कही, तो अगर मुझे याद है कि आज बाबा ने ऐसा कहा है, तभी कोई भी बात ऐसी होगी। अब सारे दिन में ऐसे तो है नहीं कि कोई बात नहीं आएगी, जब हमें गुस्सा नहीं आएगा, कोई भी बात आ सकती है गुस्से वाली, लेकिन मुझे याद है तो आज बाबा ने गुस्से के लिए ऐसे कहा, तुरंत हमें याद आएगा और हम क्रोध से नहीं, शांति से और प्यार से बात करेंगे, क्योंकि वो दैवी गुण मुझे धारण करने हैं, हम देवता बन रहे हैं, देवता बनने वाली आत्माएं। तो वही समर्थ संकल्प हमारे मन को शक्तिशाली बनाते हैं, उसी से एकाग्रता होती है। जब हम योग में बैठते हैं, जितना शुद्ध चिंतन हमारे मन में चलता है उतना ही मन सहज एकाग्र हो जाता है, जितना व्यस्त संकल्प चलेंगे उतना ही मन इधर उधर की बातों में जाता रहेगा, एकाग्र नहीं हो पाता है। तो एकाग्रता माना, जिस समय मन को हम जहां लगाना चाहें, जिस स्थिति में स्थित करना चाहें, मन स्थित हो जाए, और जितना समय स्थित करना चाहें उतना समय स्थित हो जाए। अगर मैं चाहती हूं कि मैं अव्यक्त स्थिति में, फरिश्ता स्थिति में मन को स्थित कर लूं, हमें सकाश देनी है बाबा के साथ, तो फरिश्ता स्थिति, फरिश्ता ही संसार में कहीं भी जा सकता है, जिसको बाबा कहता है कि मन जो है वो अंतर्मुखी यान की तरह है, जैसे अंतरिक्ष यान होता है तो इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से परे अंतरिक्ष में चला जाता है, कितनी दूरी तक वो चला जाता है और पूरी धरती का वो ले सकता है कि इस पूरी धरती पर क्या चल रहा है, उसके चित्र वो खींच सकता है। तो ऐसे ही फरिश्ता स्थिति, इस प्रकार की स्थिति है आत्मा की, तो मैं फरिश्ता स्थिति में आधा घंटा योग करना चाहती हूँ, तो आधा घंटा तक मेरा मन फरिश्ता स्थिति में ही रहे, और यदि मैं बीज रूप स्थिति में परम धाम में अपने मन को स्थित करना चाहती हूँ, बिंदु रूप स्थिति बाबा जिसे कहता है, तो बिंदु रूप स्थिति माना बाबा के अति समीप, जैसे बाबा के लगन में हम मगन हो जाते हैं, तो ये जैसे ज्वालामुखी योग की तरह कार्य करती है, योग अग्नि की तरह कार्य करती है। और योग अग्नि माना जिसमें हमारे पुराने विकर्म भस्म हो जाते हैं, जिसमें आत्मा के पुराने संस्कार दग्ध हो जाते हैं। इतनी पावरफुल स्टेज है बिंदु रूप योग की स्थिति। लेकिन हम कितना समय बिंदु रूप स्थिति में योग कर पाते हैं, परम धाम में कितना समय रह पाते हैं? हाँ, कुछ तो ऐसे हैं कि परम धाम में मन को ले गए, एक मिनट भी परम धाम में नहीं रुक पाए और नीचे आ गए। हाँ, कोई बात जो है वो बुद्धि को नीचे खींच लेती है, फिर हम सोचते हैं कि अभी तो हम बाबा को याद कर रहे हैं, फिर ले जाते हैं मन को परम धाम में, फिर कोई बात याद आ गई, फिर बुद्धि नीचे आ गई। तो ये ड्रिल चलती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी। इसे एकाग्रता वाला योग नहीं कहेंगे, योग कहेंगे लेकिन साधारण योग है, वो योग अग्नि नहीं है, जिसे बाबा कहता है ज्वालामुखी योग है। वही योग में इतनी पावर है, उस योग में अगर एक संकल्प में हम लंबे समय तक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो जिस आत्मा के प्रति हम कल्याण का संकल्प करेंगे, वो संकल्प की सिद्धि होगी। इतनी पावर उस संकल्प में भर जाती है। लेकिन आधा घंटा, आधा घंटा नहीं तो कम से कम 15 मिनट तक उस एक संकल्प की स्थिति में मन एकाग्र हो जाए। अगर हम सोचते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो 15 मिनट तक वो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का ही अनुभव रहे। अगर हम सोचते हैं कि मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो लंबे समय तक मेरा मन वो शांति के सागर की शांति की अनुभूति में ही स्थित रहे। एकाग्रता के ऊपर आज देखो, हम देखते हैं जितने भी साइंटिस्ट हैं, उनकी सिद्धि भी क्या है, एकाग्रता से है। आज इतने इन्वेंशंस हुए हैं एकाग्रता के बल पर ही हुए हैं। घंटों वो अपने लैब में एक प्रयोग पर मन को एकाग्र किए रहते हैं, खाने की सुध-बुध भी उन्हें नहीं रहती है, तब जाकर के कोई नई चीज दुनिया के सामने आती है और इतने सुख के साधन इस दुनिया को मिले हैं। एक बार ऐसे ही दादी जानकी जी के बारे में तो प्रसिद्धि है, आप सब जानते हैं, उन्हें मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड कहते हैं ना। तो एक साइकोलॉजिस्ट इजराइल के, यूरी गेलर नाम था उनका, ये कई साल पहले की बात है, मैं समझती हूँ करीब 20-22 साल हो गए इस बात को। तो वो लंदन में आया था और वहां उसने अपने कुछ चमत्कार दिखाए, अपनी मानसिक एकाग्रता की शक्ति के कुछ चमत्कार, कि वो घड़ी की सुई है उसको देखेगा तो वो चलती हुई सुई रुक जाएंगी। माना वैसे अगर घड़ी बंद होती है तो सेल डिस्चार्ज हो गया तो घड़ी बंद होती है, लेकिन उसकी दृष्टि से घड़ी बंद हो जाती थी। फिर अगर वो दृष्टि देकर के ये संकल्प करेगा कि घड़ी चल जाए तो वापस घड़ी की सुइयां चलने लगती थी। वो ये जो कार की चाबी होती है, वो कार की चाबी को मोड़ सकता था अपनी दृष्टि से, संकल्प किया कि कार की चाबी मुड़ जाए तो पूरी चाबी मुड़ जाती, फिर कार की चाबी सीधी हो जाए तो कार की चाबी सीधी हो गई। ऐसे ही उसने मूंग, हथेली पर मूंग जो है अंकुरित करने के लिए 24 घंटे लगते हैं, पानी में भिगो के रखा जाता है, फिर जाकर के सवेरे तक उसमें अंकुर आते हैं, लेकिन उसने हथेली पर बिना भिगोए हुए मूंग अंकुरित करके दिखा दिए केवल संकल्प की शक्ति से। तो ये चमत्कार वाली बात हो गई। तो दादी जी के साथ उनका ये कार्यक्रम आयोजित किया गया वहां लंदन में, एक अल्बर्ट हॉल है, बड़ा हॉल है, वहां पर एक प्रोग्राम रखा। तो दादी जी भी बैठे थे और वो भी स्टेज पर था। और उसने अपने ये सारे जो प्रयोग हैं जो अभी बता रहे थे आपको, ये सारे प्रयोग उसने सभा में करके दिखाए। सभा में से किसी किसी को बुलाया और उनको स्टेज पर खड़ा किया और ये सब की चाबी मोड़ दी, चाबी सीधी कर दी, मूंग अंकुरित कर दिए, सबने देखा। फिर उस दादी जी को कहा तो दादी जी ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे जैसा ये चमत्कार नहीं कर सकती, राजयोग में चमत्कार नहीं करते हैं, लेकिन मैं सारी सभा को शांति अनुभव करा सकती हूँ, ये शक्ति है। तो दादी ने फिर कमेंट्री कराई और वो हॉल पूरा भरा हुआ था और वो कमेंट्री जितनी देर चली पिन ड्रॉप साइलेंस था, सबको बहुत अच्छा शांति का अनुभव हुआ। तो फिर उसने भी जो वो साइकोलॉजिस्ट था उसको भी वो शांति का अनुभव हुआ, दादी जी ने जो उस समय अनुभूति कराई। तो उसने कहा कि दादी जी ये जो मेरे चमत्कार हैं ये तो थोड़े समय की बात है, इससे किसी को कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, लेकिन आपने जो शांति का अनुभव कराया इसकी दुनिया को जरूरत है, ये मैं नहीं कर सकता हूं, तो आपकी शक्ति मेरे से ज्यादा पावरफुल है। हाँ, ये उसने स्वीकार किया कि अभी अभी मैंने देखा कि कैसे सारी सभा को आपने शांति का अनुभव करा दिया, मैं भी उस शांति का अनुभव कर रहा था, तो कुछ संसार को क्या चाहिए, शांति चाहिए। तो बाबा ने हमें वो शक्ति दी है कि मैं शांत स्वरूप स्थिति में हूं तो शांति के वाइब्रेशन हम सारी सभा में सारे विश्व में फैला सकते हैं। मैं शक्ति स्वरूप की स्थिति में हूं, लेकिन जैसे बताया कि लंबे समय तक मेरा मन उस एक संकल्प में एकाग्र हो जाए, एकाग्रता के द्वारा ही वो सिद्धि हमें मिलनी है। जिस आत्मा के प्रति हम कर रहे हैं उसके प्रति एक तो हमारी मनसा शुद्ध होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए, उनके प्रति मन में कोई नेगेटिव संकल्प नहीं और मन एकाग्र हो, जितना एकाग्र होगा उतना ही वो शक्तिशाली होगा। तो हम जो संकल्प करते हैं वो दूसरों तक पहुंचते हैं, उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी आती है कि कैसे हम जो सोचते हैं वही वो भी हमारे प्रति सोचने लगते हैं। तो एक बार एक राजा था, वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। तो पुराने जमाने में राजा लोग अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य में वेश बदल कर घूमते थे। तो वो भी अपने मंत्री के साथ अपने राज्य में घूम रहा था एक दिन, तो उसने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है। तो मंत्री ने कहा महाराज बहुत आसान उत्तर है, जो आप अपनी प्रजा के बारे में सोचते हैं वही प्रजा आपके बारे में सोचती है। तो राजा कहता है ऐसा कैसे, मैं नहीं मानता इस बात को। तो मंत्री ने कहा महाराज हम राज्य में हैं और अभी हम कुछ लोगों से मिलेंगे, मैं आपको प्रमाण दिखा सकता हूँ। राजा ने कहा ठीक है। तो देखा कुछ समय के बाद एक लकड़हारा सामने से आ रहा था और उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था। तो राजा ने जब उस लकड़हारे को देखा तो राजा को क्रोध आया कि लकड़हारा जो है वो पेड़ काटता है और लकड़ियां, अब रोज ही ये लकड़ियां काटता होगा तो हमारे राज्य के कितने पेड़ ये नष्ट कर रहा है। तो उसने मंत्री को कहा कि इसको कल राज दरबार में बुलाना और इसको मैं सजा दूंगा जो ये करता है। तो फिर मंत्री ने राजा को कहा कि महाराज आप एक तरफ हो जाइए, मैं इस लकड़हारे से पूछता हूँ ये आपके बारे में क्या सोचता है। तो उसने लकड़हारे से सवाल किया कि तुमको पता है कि हमारे राज्य की राजा की मृत्यु हो गई है। तो उसने कहा नहीं, लेकिन मुझे ये जानकर क्या करना है, हमारे राज्य का राजा जिए या मरे उससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा राजा जिसको अपनी प्रजा का ख्याल नहीं ना, उसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। तो वो चला गया आगे और मंत्री ने राजा की तरफ देखा तो राजा ने कहा मैं नहीं मानता इस बात को, ये लकड़हारा तो मूर्ख लगता है मुझे। और वो दोनों आगे चले गए तो वहां सामने से अब एक बूढ़ी माता आ रही थी और हाथ में लकड़ी थी, लकड़ी पकड़कर चल रही थी वो। तो राजा को दया आ गई उसको देख करके। तो राजा ने अपने मंत्री को कहा कि हाँ ये बूढ़ी माँ है, पता नहीं इनके परिवार वाले इसकी ठीक से देखभाल करते होंगे नहीं करते होंगे, तो कल इसको राज्य दरबार में बुलाना और हम मैं इसकी पेंशन कर दूंगा कि जब तक ये जिएगी तब तक और इसको आराम से खाना पीना मिलता रहे। तो फिर मंत्री ने इशारा किया राजा को कि महाराज आप एक तरफ हो जाइए, मैं इनसे पूछता हूँ ये आपके बारे में क्या सोचती है। तो उसने उससे भी वही कहा कि माँ आपको पता है कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो गई है। तो उसने कहा क्या मजाक करते हो, हाँ ऐसा मजाक क्यों करते हो, वो राजा जो इतना दयालु है जो अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखता है वो कैसे मर सकता है, ऐसी बात मुझसे मत कहना। और ऐसे कह के फिर वो जाने लगी। तो उसने कहा हाँ नहीं हमारे राजा की मृत्यु नहीं हुई है, मैं तो सचमुच आपसे मजाक कर रहा था, तो राजा हमारा सही सलामत है और राजा हमारा युग युग जिए, ऐसे करके फिर वो आया और उसने राजा की तरफ देखा फिर मुस्कुराया। तो अब राजा समझ गया क्योंकि उसने लकड़हारे के प्रति जैसा सोचा था वैसा ही लकड़हारे ने भी उसके प्रति विचार किए और उस बूढ़ी माँ के प्रति जैसे उसके मन में विचार आए जो रहम दया के विचार आए ऐसे ही विचार उसकी तरफ से भी उसके सामने आए। तो इसीलिए बाबा कहता है हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है, कोई भले हमारे प्रति नेगेटिव भी रखता है तो भी हमें उसके प्रति शुभ भावना शुभकामना ही रखनी है क्योंकि हमारी शुभ भावनाएं शुभकामनाएं उनकी भावनाओं को भी परिवर्तन कर देने वाली है, ये मनसा की शक्ति है। तो लेकिन उनकी भावनाओं से हमारी भावनाएं नहीं बदल जाएं, हम विश्व परिवर्तक हैं। कई बार हम सोचते हैं लोग ही ऐसे थे ना, बात ही ऐसी थी ना, हाँ ये तो होना ही था, ऐसा तो मेरा मन पर उसका असर आना ही था। तो बाबा कई ये बात कहते हैं कि वो विश्व परिवर्तक हैं या हम विश्व परिवर्तक हैं, किसको परिवर्तन करना है, हम विश्व परिवर्तक हैं। तो हमारे विचार हमारी भावनाएं जो हैं वो सदा पवित्र हों श्रेष्ठ हों आत्माओं के प्रति शुभ हों, तभी हम वातावरण में भी परिवर्तन करते हैं, जिसको बाबा कहता है वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन करना, ये भी मनसा सेवा है, और अन्य आत्माओं में भी हम परिवर्तन लाते हैं। हो सकता है कि तुरंत ना होता हो लेकिन थोड़े समय के बाद वो परिवर्तन हमें दिखाई देने लगता है। मनसा से कोई भी आत्मा को हम बाबा का बनने की प्रेरणा दे सकते हैं, उन आत्माओं के भाग्य को जागृत कर सकते हैं। जैसे शुरू शुरू में ओम मंडली में दिखाते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो अपने घर में थे लेकिन कितने लोगों को घर बैठे साक्षात्कार हुए और वो बाबा के पास आए, ढूंढते हुए बाबा के पास आए। तो हमारी मन शक्ति से दूर बैठी आत्माओं को जो सकाश देते हैं उनको प्रेरणा मिलती है कि कोई मुझे प्रेर रहा है, कोई रूहानी शक्ति है जो मुझे बुला रही है, जैसे वो मनसा उसकी वो तैयार होती है। हम किन्हीं आत्माओं के संस्कार परिवर्तन भी कर सकते हैं, आत्माओं को हम सहयोग भी दे सकते हैं, उनको हम हिम्मत भी दे सकते हैं, कमजोर से अगर वो निर्बल है तो निर्बल से हम उनको शक्तिशाली भी बना सकते हैं। और वो करेंगे कि हमें कोई सहयोग दे रहा है और उस सहयोग से हमें ये शक्ति आ रही है। कोई बीमार आत्मा है जिसके लिए तो हम करते ही हैं, हमारे ब्राह्मण परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उसे हम योग लगाते हैं, या किसी की कोई दुर्घटना हो जाती है, अचानक कोई अनहोनी हो जाती है, हम उनके लिए योग करते हैं, हमारी दादियों के लिए भी, या कोई बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं तो उन प्रोग्राम की सफलता के लिए भी हम योग करते हैं, कोई सेंटर पर विघ्न आ जाता है, कोई ऐसी बात आ जाती है उसके लिए भी हम योग करते हैं, यानी हम मन सेवा का प्रयोग कर रहे हैं और अवश्य उसके परिणाम मिलते हैं, हम उसको विधि पूर्वक करते हैं। अपने यहाँ कितने मरीजों पर ये जैसे अब हार्ट पेशेंट्स पर कैट प्रोग्राम के द्वारा उनके कोरोनरी ब्लॉकेजेस खोले जाते हैं, आप में से बहुत भाई बहनों ने सुना होगा। अभी तक करीब 20 साल से ये जो चल रहा है, जब वो राजयोग करते हैं रेगुलर रूप से तो उनके कोरोनरी ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। तो ये मनसा से ही तो है, मनसा से बाबा से शक्ति लिया और अपना जो अंग है जिसमें वो बीमारी है उसमें उस तरह के विचार जो सिखाए जाते हैं कि हार्ट के लिए हमें प्रेम स्वरूप होना है, क्योंकि जो हृदय है उसके लिए प्रेम का गुण चाहिए, वो उसकी शक्ति है। और हमारे अंदर कहीं ना कहीं प्रेम की कमी आती है, इसीलिए वो ब्लॉकेजेस पैदा होते हैं। तो जब हम उस तरह से अपने हार्ट को वाइब्रेशन देते हैं, बाबा से वो प्रेम की शक्ति लेकर के सकाश देते हैं, तो देखा धीरे धीरे वो कॉरोनरी ब्लॉकेजेस खुलने लगते हैं। तो ठीक है, दूसरों के लिए हम करते हैं। मैं हॉस्पिटल में कई सालों तक हमने सेवा की, तो हमने कई मरीजों पर ऐसे प्रयोग किए। सीरियस पेशेंट है, ऐसे ही एक हार्ट पेशेंट आया था, मैं हम नाइट ड्यूटी पर थे और काफी उनका सीरियस हार्ट अटैक था, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो हम जाग ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि बाबा कहते हैं मनसा का प्रयोग करो, इन पर हम थोड़ा प्रयोग करते हैं। तो उस आत्मा के लिए मैंने योग किया, हालांकि वो अज्ञानी आत्मा थी, लोकल माउंट आबू में रहने वाले थे। तो मैंने देखा कि सवेरे जब मैं गई उनके पास, तो उन्होंने मेरे को कहा कि बहन जी, जो आपके बाबा हैं, उन्होंने ऐसे बोला, क्योंकि हॉस्पिटल में हर एक बाबा के कमरे में बाबा की फोटो लगी हुई है, तो उन्होंने ऐसे इशारा करके बताया कि ये जो आपके बाबा हैं, ये मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप ठीक हो जाओगे, तो मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ, हालांकि उनके परिवार वालों को 48 घंटे का समय दिया था कि ये 48 आवर्स, जैसे कोई सीरियस होते हैं तो टाइम देते हैं कि भाई इतना समय निकाल लिया तो फिर हम कह सकते हैं कि ये खतरे से बाहर हैं, तो इतना ही उनको टाइम दिया हुआ था। लेकिन वो ठीक हो गए और 15 दिन के बाद हॉस्पिटल से उनकी छुट्टी भी हो गई। फिर बाद में जाकर के उन्होंने बाईपास सर्जरी कराया, आगे जाकर और चेकिंग कराई अहमदाबाद में और ट्रीटमेंट कराया। लेकिन कहने का भाव ये है कि एक बार तो वो अस्पताल से, ग्लोबल हॉस्पिटल से ठीक होकर के गए। तो जब हम उस तरह से किसी आत्मा के प्रति वो सहयोग की भावना रखते हैं, ऐसे कई मरीजों के प्रति किया, ये तो मैंने एक सुनाया आपको, लेकिन हमने जितने भी सीरियस मरीजों के प्रति इस प्रकार के प्रयोग किए, लगभग सभी में सफलता मिली। फिर भी बाबा कहता है कर्म का हिसाब किताब तो होता ही है, जब आत्मा का समय आता है शरीर छोड़ने का, वो तो है ही है, उसको तो ड्रामा में जो होनी है, जो उनकी भावी बनी हुई होती है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। लेकिन जहां भी हमारा सहयोग चाहिए और हम करते हैं तो हमें उसके परिणाम भी मिलते हैं। ऐसे अन्य भी स्थितियों में हम मनसा सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम मनसा सेवा करते हैं, जो भी मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा की जिम्मेवारी बाबा ने हम बच्चों को दी हुई है, लेकिन जो अंतिम समय की सेवा बाबा कहता है वो मनसा सेवा कहता है। बाबा कहता है अंत में आपको और सेवाएं करने की न तो मार्जिन होगी और ना ही आपके पास वो समय होगा कि आप किसी को ज्ञान देने के लिए जा सकें, या वो कर्मणा सेवा का भी कोई साधन हो, वो सब सेवाएं साधन होते हुए भी काम नहीं करेंगे। तो जो वायरलेस सेट है हमारा, मनसा सेवा क्या है, वायरलेस सेट है ना, तो ये वायरलेस सेट से ही आप आत्माओं को संदेश दे सकेंगे, लेकिन उसके लिए वॉइसलेस होना पड़ेगा। जब हम वॉइसलेस होंगे तो ही हमारा ये वॉइसलेस सेट काम करेगा और बाबा से हमारा फुल कनेक्शन और रिलेशन हो। जब वो कनेक्शन और रिलेशन होगा, क्योंकि कनेक्शन से ही पावर आती है, आज ये लाइट जल रही है, कनेक्शन है पावर हाउस से, तभी लाइट आ रही है। तो बाबा हमारा पावर हाउस है, पावर हाउस से वो कनेक्शन होगा तभी हम स्वयं में भी वो शक्ति अनुभव करेंगे और अन्य तक भी उस शक्ति को हम पहुंचा सकेंगे। तो इस तरह से बाबा के हम जो अंतिम समय की तैयारी है उसके लिए विशेष रूप से अपनी मनसा को पावरफुल बनाने का अभी से अटेंशन रखें, क्योंकि ये बहुत काल का अभ्यास मन के लिए चाहिए। मन सूक्ष्म है ना, तो जैसे कहते हैं पारे की तरह है, फिसल जाता है। कितना कोशिश करते हैं मन को एकाग्र करने की, लेकिन फिर भी इतनी सहज हमारी एकाग्रता नहीं होती है, तो हमें खास समय निकालकर, इसीलिए योग भट्टियां रखी जाती हैं, ताकि हम लंबे समय तक बैठ करके अपने आप को वो अभ्यास दे सकें, अपने मन को उस तरह से हम शक्तिशाली बना पाएं। तो अधिक समय, बाबा तो कहता है 8 घंटे का हमारा योग का चार्ट होना चाहिए, चलो 8 घंटे का ना हो तो कम से कम 4 घंटे का हो, 4 भी नहीं तो कम से कम 2 घंटे का तो हो, और उसमें भी पावरफुल योग का चार्ट, साधारण योग का चार्ट नहीं लेकिन पावरफुल योग का चार्ट हम बढ़ाएंगे, तो फिर हमारी मनसा में वो पावर आती जाएगी। ओम शांति।
Mm-hmm.